नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
Regarding the efforts of the government to keep the price stable, इस भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।